प्यारे भक्तों व माताओं, आप सबका श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर चौपाटी में स्वागत है। सुबह के इस भागवत प्रवचन में भागवत का ये पंचम स्कंध है, 20वां अध्याय और 3 श्लोक है, 14 से लेकर 17 तक। धन्यवाद, थैंक यू। तो मैं अनुवाद पढ़ूंगा 14वें श्लोक का, थैंक यू। ये हारमोनियम क्या हो रहा है? इसको जरूरत है मेरे को इसका। या मतलब ये उसके मुताबिक एडजस्ट कर लेते हैं। हरे कृष्ण। चलो, ये बिल्कुल ही अंदर जा रहा है, मैंने कहा एडजस्ट करेगा। आपका मंदिर इतना बढ़िया है, बहुत सुंदर है, हारमोनियम भी एक सुंदर सा लाओ, प्रणाम करने वाला नहीं। तो इस श्लोक का अनुवाद मैं स्वयं पढ़ूंगा। हे राजन, इस द्वीप के राजा प्रियव्रत के दूसरे पुत्र हिरण्यरेता थे, उन्होंने इसके 7 विवाह किए और उसके एक एक विवाह को अपने 7 पुत्रों वसुदान, दृढ़ रुचि, नाभिगुप्त, स्तुत्यव्रत, विवक्त और वामदेव को दे दिए। राजा स्वयं ग्रस्त जीवन से विरक्त होकर तप करने लगे। वैसे जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी ने इस श्लोक का तात्पर्य नहीं दिया है, पर उनकी कृपा से ही मैं थोड़ा कुछ बोलना चाहता हूं इस श्लोक पर, ठीक है, चलेगा ना? अभी देखो, जैसे यहां पर यह वर्णन आया कि महाराजा प्रियव्रत ने 7 पुत्रों को 7 द्वीप बांट दिए और खुद अपना ग्रस्त जीवन में विरक्त होकर तप करने लगे। यहां एक पॉइंट क्या है नोट करने का, हम कुछ शिक्षा लेनी है भागवत से कि महाराजा प्रियव्रत इतने बड़े राजा थे लेकिन उनका अपने राज्य से मोह नहीं था। समय आया, 7 पुत्रों को राज्य दे दिया और विरक्त होकर के वो तपस्या करने लगे। जैसे भगवान ऋषभदेव भी भागवत में कहते हैं, नायम देख देख भाजन नरलोके कष्टान काम हरते बिड़ बुजाम जे, तपोदिव्यम पुत्र का ये न सत्यम, शुद्ध ये समाद ब्रह्म सौख्यम तमंतम। हे मेरे पुत्रो, ये जो शरीर मिला हमको, ये तपस्या करने के लिए मिला है, तो तपस्या करने से क्या होगा, हमारी सत्ता शुद्ध होगी। प्रभुपद कहते थे शुद्धि न सत्ता, शुद्धि न सत्ता। प्यारे भक्तों व माताओं, इस मनुष्य शरीर में कर्मों के अनुसार जो आत्मा ही है, बस शरीर का बस एक ही धर्म है कि हम तपस्या करें, श्री कृष्ण की भक्ति करें और अपनी शुद्धि करें। जब हम शुद्धि की तरफ आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारी बातें हमारी समझ में आएंगी, जब तक हम लोग अशुद्ध बने रहे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। भक्ति साम्र सिंधु में प्रभुपाद लिख रहे हैं, भौतिक दृष्टि से कोई बड़ा विद्वान है, MBBS, FRCS, लंदन, कई डिग्रियां हैं और बड़ी ख्याति है उसकी, तो प्रभुपाद कह रहे हैं अगर वो अपने आप को मेंटल प्लेन से ऊपर नहीं उठा सकता, अगर आपने आपको मानसिक स्तर से ऊपर नहीं उठा सकता तो वो कुछ भौतिक कार्य ही वो कर सकता है और इस तरह अशुद्ध बना रहता है। भौतिक कार्यों का अर्थ अशुद्धि, कोई भी भौतिक काम हम करेंगे अशुद्ध बने रहेंगे। मेरी अपनी प्यारी आत्मा, हमने शुद्ध होना है। अगर अशुद्ध बने रहे, तमोगुण में रहे, तो फिर से हम आवागमन में चले जाएंगे। भगवान गीता में कहते हैं 14वें अध्याय में, ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्थ मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुणवृत्तस्तु अधो गच्छन्ति तामसा। जो सतोगुण में स्थित हैं वो ऊपर के लोकों को जाते हैं, स्वर्ग लोक में जाते हैं। जो रजोगुण में स्थित हैं वो इसी पृथ्वी पर जन्म लेते हैं फिर से, और जो तमोगुण में हैं वो अधोगति को प्राप्त होते हैं, अधोगच्छन्ति। तो हम लोग अगर अपने आप को शुद्ध नहीं करेंगे, वैसे तो यहां तीन गुणों का वर्णन आया है श्लोक में, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण भी ठीक नहीं, रजोगुण उससे घटिया, तमोगुण बिल्कुल घटिया। तो ठीक क्या है? शुद्ध सतोगुण, प्योर गुडनेस। शुद्ध सतोगुण में ही हम अपने परम शुद्ध भगवान की प्राप्ति कर सकेंगे। मान लो हम शुद्ध बन गए, शुद्ध हो गए, स्वर्ग लोक में जाएंगे, पर हम हमेशा के लिए वहां नहीं रह सकते। वी कैनॉट स्टे इन द हेवन फॉर एवर। 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं, क्षणे पुणे मृत्युलोके विशन्ति। जब संचित पुण्य समाप्त हो जाएंगे तो फिर से मृत्यु लोक में हमको आना पड़ेगा। तो ये आना जाना, शरीरों का परिवर्तन करना आत्मा के लिए बड़ा दुखदायी है, बड़ा कष्टप्रद है। तो महाराज प्रियव्रत ने प्रभुपाद एक जगह कहते हैं कि आजकल कैसा हो गया सिस्टम, कितना बिगड़ गया। आज का जो शासक है, राजा है, या जो भी है, या प्रेसिडेंट है, या प्राइम मिनिस्टर है, कुछ भी ले लो, कि जब तक उसको कोई गोली नहीं मारे या खुद नहीं मरे, कुर्सी नहीं छोड़ेगा। ये कुर्सी से मौत और नरक में ले जाएगा ना उसको। महाराजा प्रियव्रत से हम सबको ये सीखना है, किसी चीज से हमारा मोह नहीं होना चाहिए। राज किया उन्होंने, बड़े अच्छे ढंग से किया, समय आया अपने पुत्रों को राज दे दिया। ये नहीं कि राज मैं साथ में लेके जाऊंगा, ये शिक्षा यहां से। तो आज लोग जो है ना, उनमें विराग नहीं है। जैसे हम वो क्या नाम था अष्टक का जो पढ़ा हमने सुबह, सचिसुता अष्टकम ना, तो ये सार्वभौम भट्टाचार्य द्वारा था। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने और भी भगवान को कहा, वैराग्य विद्या निर्भक्ति योग शिक्षार्थके का पुरुष पुराण श्री कृष्ण चेतन शरीर धारी कृपाम्बुदर्जस्तमहं प्रपद्ये। भगवान क्या कहने, वैराग्य विद्या, त्याग की विद्या। तो जो चिपका रहता है कुर्सी के साथ, त्याग कहां है? महाराजा प्रियव्रत में त्याग था, ये था असली त्याग, छोड़ दिया सब कुछ। और इतना सिस्टम बिगड़ चुका है, प्रभुपाद की कृपा से सिस्टम बनेगा, सुधरेगा, नहीं तो हमारा भविष्य बड़ा अंधकार में है। क्योंकि जो ऊपर आकर शासनकर्ता बैठ जाते हैं कुर्सियों पर, छोड़ते नहीं कुर्सियां, और सब बेकार कर देते हैं। क्यों? शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है, उनमें भाव भक्ति नहीं है। अशुद्धि के कारण सारे लोगों को नरक में ले जाते हैं। ये लोग जो है ना, जो बड़े बड़े कुर्सियों पर बैठे हुए, एक दृष्टि से ये भी सबके शुभचिंतक हैं। बोलो, हैं या नहीं है? नहीं? किसने कहा नहीं? क्यों नहीं? सबके शुभचिंतक हैं। मैं अभी साबित करूंगा। कैसे? वो कहते हैं, भाई हम तो नरक में जाएंगे, अकेले नहीं जाएंगे, सबको लेके जाएंगे। तो शुभचिंतक नहीं हुए सबके? असल में नहीं शुभचिंतक सबके। तो जो नारकीय जीव है वो, उसका ये प्रयास रहता है। देखो जो शराब पीने वाला है ना, वो सोचता सब लोग शराब पिए। अच्छा, जो भक्त है, जैसे प्रभुपाद भक्त थे, शुद्ध थे, कहते सभी भक्त बने। भक्त सबको भक्त बनाता है, और जो दुष्ट है, जो नारकीय जीव है, जो बदमाश है, वो सबको बदमाश बनाता है। तो अभी बदमाशों की संख्या बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, बोलो। आपके चुपाटी में नहीं बढ़ रही होगी, यहां बढ़ रही है, यहां भी नहीं, अरे सब जगह बढ़ रही है। बड़ी बुरी हालत खराब है, मंदिर में बचे हुए हम, लेकिन बाहर जाओ क्या हालत है। मंदिर के बाहर क्या है? आशा यही मंदिर है जहां ठाकुर जी की सेवा पूजा होती है, यहीं से लोग प्रेरणा लेके जाके अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, नहीं तो लोग सब नरक में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो महाराज प्रियव्रत ये शिक्षा हमको लेनी है कि त्याग, जब समय आया हमको सब कुछ त्याग देना चाहिए, पर वो तभी हो सकता है जब शुरू से प्रशिक्षण होगा। अगर शुरू से प्रशिक्षण नहीं है, अगर छोटी अवस्था में ब्रह्मचारी नहीं रहा, वो गुरुकुल में नहीं पढ़ा, गुरु से प्रशिक्षण नहीं लिया, गुरु की सेवा नहीं की, गुरु का आशीर्वाद नहीं मिला, तो वो शुरू से ही विषय विकार में पड़ा रहेगा। अब जैसे विदेशों में कोई गुरुकुल नहीं है, प्रभुपाद जी ने तो डैलस टेक्सस में गुरुकुल की स्थापना की, मैं शुरू से बुरे कर्मों में लग जाते हैं। मुझे एक हमारा गुरु भाई बताता है, वो राधा दामोदर पार्टी में था अमेरिका में, आप में से पता नहीं किसी को पता हो या नहीं, वो कहता था कि महाराज आई वॉज सो फॉलन When I was 5 years old, 5 साल का बच्चा क्या होता है कि I used to kiss the girls। देखो ये कल्चर वहां का, 5 साल के बच्चे को गंदी ट्रेनिंग मिल रही है, गुरुकुल का प्रश्न ही नहीं। ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन दांती गुरु हितम, ब्रह्मचारी गुरुकुल में रहता था, गुरु के लिए हित के लिए कार्य करता था, और गुरु जो उसको काम बताए वो। अब कृष्ण भगवान भी गुरुकुल में रहे, कृष्ण सुदामा को बोला जाओ लकड़ियां लेके आओ, कृष्ण भगवान लकड़ियां लेने जा रहे हैं, हैं? वन से लकड़ियां लेने गए थे नहीं, सब जानते हैं वो कथा। और सुदामा जी ने सारे वो जो गुरु माता ने वो चने डाल के दिए थे वो खा लिए, कृष्ण भगवान को नहीं दिए, गलती कर दी, और रात को रहना पड़ा जंगल में, बाहर आंधी तूफान, कितना गुरु के लिए कार्य करना पड़ता है। जब गुरु कृपा मिलती है, ब्रह्मचर्य व्रत काम को शुरू से प्रशिक्षण मिलता है, हम स्त्री से दूर रहते हैं, स्त्री को मां की नजर से देखते हैं, तो वो अगर मान लो इंद्रियों पर नियंत्रण करना सीख जाए तो ब्रह्मचारी से संन्यास लेता है। अगर वो ऐसा नहीं कर सके तो वो फिर गृहस्थाश्रम में आता है, क्योंकि इंद्रियों बड़ी बलवती हैं, इंद्रियों बड़ी शक्ति है, मन बड़ा शक्तिशाली है, तो फिर गृहस्थाश्रम में आता था तो अच्छा गृहस्थी बनता था। 20-25 साल गृहस्थाश्रम में रहा, उसके बाद सब त्याग, वानप्रस्थ संन्यास लेकर के आगे का विचार करता तो उसका जीवन सफल होता था। आज ये जो मोह है, अटैचमेंट है, ये तो नरकगामी है, नरक में ले जाने वाली है। तो महाराजा प्रियव्रत प्रभुपाद कृपा से शिक्षा में मिलती है प्रियव्रत जी के जीवन से। अगला श्लोक, श्लोक 15, इन सातों द्वीपों में 7 सीमांत पर्वत हैं जिनके नाम चक्र, चतुश्रृंग, कपिल, चित्रकूट, देवानिक, उर्दव रोम तथा द्रविण हैं। इसी प्रकार 7 नदियां हैं जिनके नाम रस, रसकुलिया, मधुकुलिया, मित्रबिंदा, श्रुतबिंदा, देवगर्मा, गृत्युता तथा मंत्रमाला है। 7 नदियों के वर्णन आ रहे हैं। अगला श्लोक अनुवाद, कुश द्वीप के वासी कुशल, कोविद, अभियुक्त तथा कुलक नामों से विख्यात हैं। विक्रमशा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों के सदृश हैं। उक्त नदियों के जल में स्नान करके ये सभी वासी पवित्र होते हैं। वे वैदिक शास्त्रों के अनुसार अनुष्ठानों को संपन्न करने में कुशल हैं। इस प्रकार वे भगवान की अग्नि देवता के रूप में उपासना करते हैं। अब श्लोक 17 जिसमें प्रभुपाद जी ने तात्पर्य दिया है, ये लिखा हुआ कहीं? श्लोक लिखा है? नहीं तो आप लोग पीछे बोलेंगे या कैसे करेंगे, या मैं ही बोलूं? हाँ मैं ही बोलूं, ठीक। तो संधि छेद करके मैं बोलूं, वो एक एक शब्द तो आप बोल सकते हैं। परस्य ब्राह्मण, श्लोक में स्वयं पढ़ता हूं, परस्य ब्राह्मण साक्षान जातवेदो वसी हव्यवात देवानां पुरुषांगनानां यज्ञेन पुरुषं यजेति। मेरे पीछे सब बोलिए, अनुवाद आप सब मेरे पीछे बोलो। यह वह मंत्र है जिसके द्वारा कुश दीप के वासी अग्निदेव की पूजा करते हैं। हे अग्निदेव, आप श्री भगवान के अंश रूप हैं और उन तक समस्त हवियों को पहुंचाते हैं, अतः हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप कि हम देवताओं को जो भी यज्ञ सामग्री अर्पण कर रहे हैं उसे आप श्री भगवान को अर्पित करें, क्योंकि वे ही असली भोक्ता हैं। तात्पर्य परमदरणीय प्रात स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज द्वारा समस्त देवता श्री भगवान के सेवक हैं, अतः यदि कोई देवताओं की उपासना करता है तो वे परमेश्वर के सेवकों की भांति उनका समस्त हवियों को पहुंचाते हैं। जिस प्रकार कर संग्राहक नागरिकों से कर वसूल कर सरकारी कोष में पहुंचाते हैं, देवता इन हवियों को स्वीकार नहीं कर सकते, वे उन्हें श्री भगवान तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। जैसा कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है, यस्या प्रसादात भगवत प्रसादात। चूंकि गुरु श्री भगवान का प्रतिनिधि होता है, अतः उसे जो भी अर्पित किया जाता है उसे वह ईश्वर तक पहुंचाता है। इसी प्रकार से समस्त देवता श्री भगवान की आज्ञाकारी सेवकों की भांति समस्त हवियों को उन तक पहुंचाते हैं। यदि यह समझकर देवताओं की उपासना की जाए तो कोई हानि नहीं है, किंतु यदि कोई यह सोचे कि देवता श्री भगवान के तुल्य हैं, तो इसे हम हृत ज्ञान अर्थात ज्ञान का ज्ञान की हानि कामस्तस्तर हिता ज्ञाना कहेंगे। अतः जो देवताओं को वास्तविक वर देने वाला समझते हैं वे त्रुटि करते हैं। प्यारे भक्तों व माताओं, यह बड़ी विचारने की बात है। विचारने की बात क्या, यहां श्रील प्रभुपाद जी ने कही है कि आज भारत में हिंदू समाज में क्या है, हिंदू जहां भी हैं उनकी समझ बिगड़ गई है, उनकी समझ खराब हो गई है। क्या खराबी है? वो प्रभुपाद ने यहां बताया है कि अगर कोई देवताओं को भगवान के समान समझता है तो और उनकी उपासना करता है, यह ठीक नहीं। अगर कोई देवताओं को देवता श्री भगवान के आज्ञाकारी सेवक की भांति समस्त हवियों को उन तक पहुंचाते हैं, अगर कोई यह समझे कि श्री कृष्ण जो हैं वो देवताओं के प्रतिनिधि हैं। बड़ा अच्छा उदाहरण दिया प्रभुपाद ने कि जैसे जो टैक्स कलेक्टर है, टैक्स इकट्ठा कर रहा है लोगों से, अपने लिए थोड़ा कर रहा है, वो तो कोष में अपना ट्रेजरी में जमा करा देगा। इसी प्रकार देवता सबसे ऑफरिंग्स लेते हैं और भगवान श्री कृष्ण को अर्पण कर देते हैं। हमारे हिंदू समाज में बहुत बड़ी गलती क्या आ गई है, मान लो कोई किसी देवी देवता की पूजा करता है उसी को सब कुछ मानता है, उसके परे कुछ समझता ही नहीं। वो मान लो कोई दुर्गा माता का भक्त है, वो सोचता है कि दुर्गा ही सब कुछ है, वो कुछ और सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, मया अध्यक्षेना प्रकृति सुयते सचराचरम, ये जो दुर्गा है मेरी अध्यक्षता में कार्य कर रही है। भुवनानी दुर्गा, उसमें भी वर्णन आता है ब्रह्म संहिता में, तो ये है सही समझ। आज हम हिंदुओं की समझ बिल्कुल बेकार हो गई। वैसे हमारे पास धर्म जो है सनातन धर्म, वो ही असली धर्म है। अंग्रेजी में कहा कि ओल्ड इज गोल्ड एंड गोल्ड इज नेवर ओल्ड, सोना कभी पुराना नहीं होता। तो सनातन अर्थ है, प्राचर मुनि ने इसकी वो व्याख्या की है, सनातन अर्थ है कि जिस जो बिगनिंग लेस, जिसकी कभी कोई शुरुआत ही नहीं हुई, यही असली धर्म है। लेकिन हम इस असली धर्म के अनुयायी बिल्कुल बेकार, जो कलयुग में धर्म शुरू हो गए उनके अनुयायी बड़े पक्के अपने धर्म के पालन में, बड़े पक्के, लेकिन जिनको पक्का होना चाहिए वो सबसे कच्चे। उनका क्या, गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास। अगर आप गंगादास है तो गंगादास बन के रहो, नहीं, एक जगह माइंड फिक्स नहीं है उनका। एक दोहा है बड़ा सुंदर, एक सदे तो सब सादे सब जाए, एक को साधने से सब सद जाते हैं और सबको साधने से सब चले जाते हैं। अभी आप हिंदुओं के घरों में जाओ, सभी मूर्तियां मिलेंगी। हमने जिस घर में जन्म लिया वहां भी कृष्ण भी थे, राम भी, दुर्गा माता, काली माता भी थी मेरे ख्याल में, गणपति भी थे, शिव जी भी थे, सभी थे। और हिंदू घरों में आम है ऐसा। और वो जो जिसकी पूजा का, अभी एक मैं छोटी सी आपको कहानी सुनाता हूं। एक व्यक्ति ने नदी पार करनी थी, तो नदी पार करते समय उसमें पानी कम था, लेकिन पीछे से बाढ़ आ गई। नदी में बाढ़ आ सकती है, पीछे बारिश हुई और बाढ़ आ गई। वो था हमारा हिंदू भाई था बेचारा, वो बहने लगा, पानी बहुत आ गया, बहने लगा। कहता है, हे गणपति जी मैं मर रहा हूं, मैं बह जाऊंगा, मेरी रक्षा करो। पुकारा गणपति जी को, गणपति जी आ गए मदद करने में, इसको बचाओ बेचारे मेरे को पुकार रहा है। गणपति जी जैसे पहुंचे कहता है, हे पार्वती माता, आप तो गणपति की मां हो, मुझे बचाओ। अब गणपति कहते, मेरी मां को पुकार रहा है ये, गणपति चले गए। शिक्षा की बात नहीं है, शिक्षा की बात है ही नहीं, हाँ? सीखने की बात है कुछ नहीं, खाली हंसी की नहीं, इसमें बहुत सीखने की बात है, हंस भी सकते हैं आपको, ऐसी बात नहीं। फिर जब पार्वती माता आई, पुकार रहा था, डूब रहा था, मरता क्या नहीं करता, मर रहा था, कहते हे महादेव आप तो पार्वती के पति हैं, गणपति के पिता हैं, मुझे बचा लो। पार्वती कहती मेरे पति को पुकार रहे। माता पार्वती पीछे हो गई, भोलेनाथ आए जब बचाने के लिए, अभी क्या कहता है, हे राम भगवान मेरी रक्षा करो, आपको तो शिवजी भी पूछते हैं। अब शिवजी कहते हैं राम जी को पूछ रहा है, राम को बुला रहा है, राम जी आए मदद करने। कहते हे राम आप, हे कृष्ण आप तो लीला पुरुषोत्तम हैं, आप तो 16 कला संपूर्ण हैं, आप राम जी से भी बड़े हैं, मेरी रक्षा करो। राम जी कहते हैं मेरे कृष्ण रूप को प्राप्त बुला रहा है कृष्ण, वो कहीं एक जगह फिक्स नहीं था, डूब गया बेचारा वो। ये हाल आज हिंदुओं का हो चुका है। बोलो मैं गलत कह रहा हूं या ठीक कह रहा हूं? प्रभुपाद ने ही हमारी समझ को सुधारा है। गीता में साहब भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम। भगवान ने कहा कि मेरी एक ही तो भक्ति कर। एक कहा भगवान ने, अहम त्वाम सर्व पापे प्यो, मैं तुमको पापों से छुड़ाकर मुक्ति दूंगा। भगवान ने और किसी की शरण में जाने के लिए नहीं कहा। और भगवान ने यह भी कहा, यह श्लोक प्रभुपाद ने कोट किया है सातवें अध्याय का 20वां श्लोक, कामस्तिस्त्र हिता ज्ञान परपदन्ते अन्य देवता तम तम नियमम आस्थाया प्राकृत्या नियता स्वया। कामस्तिस्त्र, जिनके मनों में बड़ी कामनाएं हैं उनका ज्ञान हरण हो जाता है। भौतिक कामनाएं हमारे दिव्य ज्ञान को हरण कर लेती हैं। कामस्तिस्त्र हिता ज्ञान, ज्ञान चला गया, वो क्या करते हैं, प्रपद्यन्ते अन्य देवता, दूसरे देवी देवताओं के पास जाते हैं। प्रभुपाद ने बड़ा स्पष्ट किया है, दूसरे देवी देवताओं के पास जाना कोई खराब नहीं है अगर आपकी समझ ठीक है तो। वैसे सबसे बढ़िया क्या है, हम कृष्ण की शरण में जाएं, पर यह भी ध्यान रखो देवताओं को भी अपमान नहीं करना कभी भी। जो देवताओं का अपमान करता है वो कृष्ण का प्रिय नहीं है, भक्ति सामर सिंधु में लिखा हुआ है। मुझे एक घटना याद आई दिल्ली की। दिल्ली में एक मंदिर है मलाई मंदिर, दक्षिण भारत को ऐसा ही नाम है मलाई, पता क्या नाम उसका, शिव जी का मंदिर है वो। तो हमने किसी से सुना वो शिव जी का जो लिंग है उस पर एक सांप आके बैठ जाता है। तो हम भी क्यूरियस हो गए, भाई सांप देखें जाके कैसा है, तो चमत्कार है। तो एक अमेरिकन भक्त था, उसको मैंने कहा चल भाई मेरे साथ, तो कहते चल। चले गए हम मंदिर में, पहुंचे पहाड़ी पर ये मंदिर है। मैं गया जा मंदिर में, महादेव को प्रणाम किया, ये अमेरिकन खड़ा रहा, इसने प्रणाम नहीं किया। तो सांप सूंप तो हमको देखा नहीं वहां पर, महादेव के दर्शन हुए। हम बाहर आए, तो बाहर जब आए तो मेरे को ये भक्त कहता है कि व्हाई यू पेड योर ओबेसेंसेस टू लॉर्ड शिवा। मैंने कहा व्हाई नॉट, प्रभुपाद सेज दैट वी आर डिवोटी ऑफ कृष्णा एंड वी शुड नॉट पे ओबेसेंस टू लॉर्ड शिवा। मैं चुप रहा, उसको तो कुछ कहा नहीं, तो मैं प्रभुपाद के पास आ गया। मैंने कहा प्रभुपाद आपने ये कहा है कि हमें शिवजी को प्रणाम नहीं करना चाहिए। प्रणाम नहीं करना, प्रभुपाद कहते किसने कहा? मैं प्रभुपाद को भक्त कह रहा है। प्रभुपाद कहते हैं ये बस मेरा नाम लेके कहते हैं, प्रभुपाद सेज दिस, प्रभुपाद सेज दैट, बट आई नेवर से दिस, नेवर से दैट। प्रभुपाद कहते हैं कि व्हाट टू स्पीक ऑफ वर्शिपिंग लॉर्ड शिवा, ए वैष्णव मस्ट रिस्पेक्ट एन एंट आल्सो। वैष्णव को एक चींटी का भी स्वागत करना चाहिए, क्यों? वो भी आत्मा है, वो भी परमात्मा की है और परमात्मा उसके साथ भी बैठे हुए हैं। वो प्रभुपाद कहते हैं शिव जो हैं वो महादेव हैं, सारे देवताओं के बड़े हैं। तो मेरा पॉइंट ये है, कि हम सीधा वैसे भगवान ने कहा मेरी एक ही क्षण में आओ, पर इसका मतलब ये नहीं आप शिव जी के डिसरिस्पेक्ट करो या किसी देवी देवता की डिसरिस्पेक्ट करो। हमें तो सबका सम्मान करना है, एक चींटी का भी सम्मान करना है, क्योंकि वह भी आत्मा है और वह भी परमात्मा की है। तो मेरे प्यारे हरि भक्तों व माताओं, इस बात को याद रखो कि हमें वैसे अपनी समझ को ठीक करना है। बड़े साफ शब्दों में प्रभुपाद ने कहा है, श्री भगवान के आज्ञाकारी सेवकों की भांति समस्त हवियों को उन तक पहुंचाते हैं। देवता लोग क्या करते हैं, इसी प्रकार से समस्त देवता श्री भगवान के आज्ञाकारी सेवकों की भांति, जैसे टैक्स कलेक्टर टैक्स इकट्ठा करके ट्रेजरी में जमा कर देता है, इसी प्रकार देवता लोग जो भगवान के सेवक हैं। यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र कर्मलोक को वंदना, हर कर्म वैसे यज्ञ पुरुष भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। एकाला ईश्वर कृष्ण और सभा भृत्य, ईश्वर नियंता खाली कृष्ण हैं, बाकी सब उनके सेवक हैं, बाकी सब कृष्ण के सेवक हैं, चाहे वो शंकर हैं या ब्रह्मा हैं। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि अगर आप कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं अब कृष्ण के सेवकों का तिरस्कार करो, ये कृष्ण भगवान को अच्छा नहीं लगेगा। और फिर प्रभुपाद यहां रेफर कर रहे हैं कि जब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की बात, के विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने क्या कहा, यस्या प्रसादात भगवत प्रसादो यस्या प्रसादात नगतीत तोपी ध्यायांस तो वांस्तस्य यस्य त्रिसंध्या वंदे गुरु श्री चरणारविंद। गुरु जो है ना वो सेवा लेता है अपने शिष्य से और वो भगवान को अर्पण कर देता है। और जो कृपा आती है, जैसे प्रभुपाद यहां बता रहे हैं जैसे कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, देवता इन हवियों को स्वीकार नहीं कर सकते, उन्हें श्री भगवान तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। जैसा कि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा कि यस्या प्रसाद, चूंकि गुरु श्री भगवान का प्रतिनिधि होता है अतः उसे जो भी अर्पित किया जाता है उसे वह ईश्वर तक पहुंचाता है। तो गुरु भगवान का प्रतिनिधि है, गुरु को जो सदगुरु है, जो बोनाफाइड गुरु है, जो प्रमाणिक गुरु है, उसको जो कुछ भी दिया जाता है वह भगवान को अर्पण कर देता है, अपने तक नहीं रखता। और देवता भी इसी प्रकार हैं, देवता जो हैं वे भगवान के सेवक हैं, भगवान के ये जो कार्य क्षेत्र को चलाने वाले हैं, भगवान का जो यूनिवर्सल अफेयर उसको देवता लोग चला रहे हैं। जैसे मान लो प्रेसिडेंट ने मिनिस्टर या बाकी लोगों को अपॉइंट कर रखा है, अमेरिका की बात कर रहे हैं हम, वो सब गवर्नमेंट चला रहे हैं मिलकर के। इसी प्रकार देवता लोग भगवान की सरकार को चला रहे हैं। लेकिन हम लोगों में कमी क्या आ गई कि हम लोग बजाय इसके कि अपनी ठीक समझ रख के देवताओं का ठीक तरह सम्मान करें और कृष्ण की भक्ति करें, कृष्ण के लिए सब कुछ करें, लेकिन हम मान लो मैं किसी देवी देवी का भक्त हूं या देवता का भक्त हूं, मैं कहता मेरा देवता ही सब कुछ है और वही सबसे बड़ा है और कृष्ण को पीछे कर देता हूं। अब जैसे एक धर्म है वहां पर उनका गुरु कह रहा है, जिसने वो धर्म को स्थापित किया, वो कहता है कि कृष्ण हमारे इष्ट देव हैं, मेरे सत्संगियों को कृष्ण मंदिर में जाना चाहिए, भगवत गीता पढ़नी चाहिए, भागवत पढ़ना चाहिए, लेकिन वो अनुयायी ने क्या कर रहे हैं अभी, उन्होंने वो जिन्होंने वो धर्म या जो भी था उसको स्थापित किया उसको रख दिया बीच में और कृष्ण को कर दिया साइड में, ये तो ठीक बात नहीं। वो कह रहा है कृष्ण की भक्ति करो, अनुयायियों ने कृष्ण को कर दिया एक तरफ, बिल्कुल गलत बात है। आप अपने गुरु को भी पूछो, सदगुरु तो खुद पूजा स्वीकार करता नहीं, वो भगवान को अर्पण कर देगा। और भगवान ने भी कहा कि तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्ने न सेवया उपदक्षण तीते ज्ञानम शंख गांव नहीं नहीं मैं शंख कहां बज रहा भैया मैंने कहा मैं शंख कहां बज रहा ज्ञानी तत्व दर्शन मैंने क्या बोलू इसे हैं अच्छा मैंने तत्व जी प्रणिपाते ना परिप्रश्न ना सेविया उपदक्षण की ते ज्ञानम ज्ञानी तत्व दर्शन भगवान कहते हैं ज्ञानी गुरु के पास जाने के लिए कह रहे हैं भगवान जो पद्धति प्रभुपाद जी ने दी है ना बड़ी ऑथेंटिक बड़ी प्रमाणिक और सही पद्धति ही यही है आज जिसके दिमाग में जो बात है यह तो मत तत्व तो पथ आपने अपने पथ बना लिए और कहीं नहीं पहुंचेंगे ये बेचारे ये जो मत मतांतर वाले कहीं नहीं पहुंचेंगे अनुयायी बड़े बन जाएंगे इनके और सब कुछ इनकी ऑर्गेनाइजेशन भी बढ़िया हो जाएंगी लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे भगवान तो सही समझ से ठीक अंडरस्टैंडिंग से मिलेंगे कृष्ण भावना से भावित होने से मिलेंगे कृष्ण के चरणों में प्रेम होगा तो श्री कृष्ण मिलेंगे तो आज हमारे हिंदुओं की हालत बड़ी खराब हो चुकी है प्रभुपाद ने एक शब्द कहे हैं कि हिंदू जो हैं वो कृष्ण भगवान के बिल्कुल नजदीक हैं मान लो ये कृष्ण है उदाहरण और हिंदू ये है बिल्कुल नजदीक तो प्रभुपाद कहते हैं पर उसने पीठ कर लिया कृष्ण से और दूर जा रहा है और दूसरे जो भक्त बनाए भगवान ने विदेशों में वो इतने दूर हैं कृष्ण से लेकिन उन्होंने मुंह कृष्ण की तरफ कर लिया और कृष्ण की तरफ आ रहे हैं हिंदू दूर जा रहे हैं समझ ही ठीक नहीं अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं है और अंडरस्टैंडिंग जो है देवताओं को भी अगर हम पूछते हैं इस समझ से कि ये भगवान के सेवक हैं अभी आप देखो कि गोपियों ने देवताओं को पूजा माता कात्यायनी की पूजा की गोपियों ने क्या कहा हे मां हम पर कृपा करो ताकि हमें कृष्ण की प्राप्ति हो जब सीता माता अशोक वाटिका में आए फूल चुनने के लिए देवी की पूजा करने के लिए गौरी माता की पूजा करने के लिए और राम जी भी वहां उसी वाटिका में आए थे अपना विश्वामित्र जी के लिए ऋषि विश्वामित्र के लिए फूल ले जाने के लिए तो वहां सीता माता ने भगवान राम को देखा मन में इच्छा की कि मेरे यही पति हो वैसे उनके वही पति हैं लेकिन फिर भी लीला हो रही है अभी जब गौरी माता की पूजा के लिए सीता माता गए उन्होंने पूजा की जय 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 गिरिराज किशोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी बड़ी सुंदर प्रार्थना की माता सीता ने और गौरी माता जो शंकर भगवान की पत्नी है उन्होंने कहा सुन सिय सत्य आशीष हमारी सफल होवे मनोकामना तिहारी मेरी शीश है तेरी मनोकामना पूरी होगी तुम्हें रामपति रूप में मिलेंगे कई उदाहरण है भागवत महाराजा प्रचनी भरी हुए हैं उनके पुत्र जब तपस्या करने के लिए जा रहे थे अपने पिता की आज्ञा पर तो उनको महादेव मिले उन्होंने कहा कि आप ये मंत्र जपो इस मंत्र के जपने से आपको भगवत प्राप्ति होगी तो देवी देवताओं से हमने सहयोग लेना है कृष्ण प्राप्ति में और वैसे हम कलयुग के लोगों के पास टाइम बड़ा कम है अगर हम तरीके से कृष्ण की भक्ति करें पर मेरा पॉइंट बड़ा ये है कि मैंने बड़ी बार देखा कि हमारे इस्कॉन के भक्त लोग देवी देवताओं का अपमान करते हैं और फिर मैंने उनको जाते भी भागते भी देखा बेचारे इस्कॉन छोड़ के भी चले जाते हैं वो ज्यादा देर टिक नहीं सकते समझ ठीक नहीं होती उनकी देखो कि जब हम कोई भी अपराध किसी के प्रति भी कर देगा तो उसका फल भोगना पड़ता है देवता लोग जो भगवान के पार्षद हैं उनके प्रति अपराध करेंगे तो कैसे हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो स्ट्रांग पॉइंट यही है कि हम सभी का सम्मान करें हैं? अगर देवताओं की पूजा करते हैं तो ये समझ करके कि जो मैं इनको अर्पण कर रहा हूं जैसे इस दीप का वर्णन आता है ना कि यह जो मंत्र है वो अपना इस दीप के लोग अग्निदेव को कहते हैं कि आप श्री भगवान के अंश रूप हैं और उन तक समस्त हवियों को पहुंचाते हैं। जब हम अग्नि देव को अर्पण दो तरीकों से भगवान स्वीकार करते हैं, एक अग्नि और दूसरा वैष्णव ब्राह्मण। जब आप अग्निदेव में अर्पण करते हैं तो भगवान को पहुंचता है, जब आप वैष्णवों को प्रसन्न करते हैं, वैष्णवों को कुछ देते हैं, तभी भगवान वैष्णवों के माध्यम से स्वीकार करते हैं। वही इस द्वीप के लोग कह रहे हैं कि अग्निदेव आप श्री भगवान के अंश रूप हैं, भगवान के अंश हैं, भगवान नहीं है, और उन तक समस्त हवियों को पहुंचाते हैं। जो भी हम हवन डालते हैं, आपको अर्पण करते हैं, वो आप भगवान तक पहुंचा देते हो, भगवान तक पहुंचाते हैं। अतः हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम देवताओं को जो भी यज्ञ सामग्री अर्पण कर रहे हैं उसे आप श्री भगवान को अर्पित करें, क्योंकि वे ही असली भोक्ता हैं। ये बड़ी अच्छी समझ है इस द्वीप के लोगों की, कि अग्निदेव से कह रहे हैं कि जो हम आपको ये अर्पण कर रहे हैं, हैं? और जो हम देवताओं को अर्पण कर रहे हैं, हम देवताओं को जो भी यज्ञ सामग्री अर्पण कर रहे हैं आपके माध्यम से, आप उनको भगवान तक पहुंचाते हैं, और जो भगवान असली भोक्ता है। भगवान कहते हैं गीता में, भोक्ता राम जग तपसाम सर्वलोको महेश्वरम, सारे लोगों का भोक्ता और मालिक मैं हूं। असली भोक्ता कृष्ण है और कोई भोक्ता नहीं है। एकाला ईश्वर कृष्ण आर सब भ्रत्य, ईश्वर नियंता खाली कृष्ण है, बाकी सब उनके सेवक हैं। नियंता कृष्ण और सब सेवक, ये हमने अपनी समझ ठीक करनी है। अगर हम कृष्ण भगवान के सेवक बन जाते हैं तो हम मुक्त पुरुष हैं। अगर हम ये समझते हैं कि मैं कृष्ण का दास हूं, कृष्ण स्वामी है, कृष्ण हर वस्तु के मालिक है, तो जीव मुक्त है। अगर हम खुद को भोक्ता समझते हैं, जो कहते हैं देवी देवता बड़े हैं, तो हम पर बंधन में हैं, हम पर मुक्त नहीं है। अभी हमारे हिंदू लोग बेचारे इतने भटक गए हैं, एक प्रश्न करते हैं हिंदू लोग, कहते हैं जी आप कहते हो राम बड़े हैं, कृष्ण बड़े हैं, तो राम जी ने तो शिव जी की पूजा की थी, कोई शंका नहीं है इसमें। जब रामेश्वरम में गए थे, भगवान लंका पर चढ़ाई करनी थी, उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की थी, कहते पूजा की थी, मैंने हाँ जरूर की थी, कहते पर राम तो सेवक है शिव जी के। मैं उनको एक बात कहता हूं, आप बताओ ठीक कहता हूं या गलत कहता हूं। मैं कहता हूं भैया आप तुम ये बताओ, आपने सुन रखा है कि सुदामा जी जब कृष्ण भगवान को मिलने गए थे, उनके लिए वो चिवड़ा ले गए थे, चिप्ट राइस ले गए थे, कहते हाँ ले गए थे। मैंने जब सुदामा जी कृष्ण के पास गए थे, तो कृष्ण भगवान ने सुदामा को क्या कहा था कि मरी पूजा करो? कृष्ण भगवान ने सुदामा की पूजा की थी, अपने सिंहासन में बिठाया, शरण धोए भगवान के, चनामृत लिया, बोला सारी द्वारका में चनामृत छिड़क दो। किया था नहीं किया था? वो कहते हाँ किया था। मैंने वो सुदामा भगवान बन गया, अभी कृष्ण सेवक हो गए फिर? कोई जवाब नहीं उनके पास। समझ, जब तक कुछ संत प्रभुपाद जी जैसे महान वैष्णव समझाने वाले ना हो, कुछ समझ नहीं आता। एक व्यक्ति की मैं बात बताता हूं आपको, ये कहीं बंबई का ही था, पता नहीं अभी है, बड़े 30 साल पुरानी बात कर रहा हूं, देवेंद्र विजयी उसका नाम था। इतना वो व्यक्ति अच्छा गाता था, इतना नॉलेज था उसको, अपना भागवत या भगवत गीता या रामायण का नॉलेज तो छोड़ो, उसको जैन मत का ज्ञान, उसको दूसरे मतों का ज्ञान, और उसको क्लासिकल आता था। जब वो गाता था लोग पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाते थे, दुनिया उसको सुनने जाती थी। मैंने भी उसको सुना, मेरी थोड़ी गाने में रुचि है, मैंने कहा इससे मैं गाना सीखूं थोड़ा, उसके पास चला गया मैं, वो भी इंटरेस्ट लेने लगा थोड़ा मेरे में सिखाने में। लेकिन मुझे प्रभुपाद ये बताना चाहते थे कि ये आदमी क्या है, ऐसे नहीं बैठते भगवान के सामने, ऐसे नहीं बैठना चाहिए। नेक्टर ऑफ डिवोशन में लिखा है ऐसे करके भगवान के सामने नहीं बैठना चाहिए। तो इतना नॉलेजेबल मैंने सुना उस आदमी को कुछ दिन, बड़ी पुरानी बात बता रहा हूं। तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा भाई इस देवी देवतों में सब में बड़ा कौन है? कहता है सभी में बड़े शंकर भगवान है। देखो जब गीता का ज्ञान बखान रहा है, भागवत भागवत का भी ज्ञान उसको है, गाता क्या है, भजन गाता है, लेकिन ये पता नहीं कि सुप्रीम पर्सनैलिटी कौन है। जब तक कोई शुद्ध भक्त ना हो, अच्छा वो इतना निपुण आदमी, पैसे इकट्ठे, दुनिया भर का धन उसको आता था, और मेरे साथ इंटरेस्ट इसलिए लेने लगा, वो तो बात नहीं करता था किसी से, इसलिए इंटरेस्ट लेने लगा। बाद में मुझे पता लगा, मुझे कहता है मुझे इंग्लैंड का वीजा दिला दो। फिर मैंने वैसे बोला, जयतीर्थ उस टाइम था, मैंने जयतीर्थ को बोला, मैंने कहा कि ये इंग्लैंड का वीजा चाहता है, तो जयतीर्थ ने नहीं लेके दिया था शायद उसको। तो देखो पानी है कहीं, उसको हो ज्ञान इतना, गाता इतना, लोगों को इतना प्रभावित करता था, हजारों लोग उसको सुनने आते थे, लेकिन उसकी अपनी समझ देखो, उसको यही नहीं पता कि सबसे बड़ा कौन है। यही हिंदू समाज का हाल है, हिंदू लोगों का यही हाल है। आज बड़े बड़े प्रवक्ता घूम रहे हैं, हजारों लाखों की तादाद में लोग उनको सुनते हैं, उनकी अपनी समझ ही ठीक नहीं है, उनको ये नहीं पता कि सबसे बड़ा कौन है, हु इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, दे डोंट नो। खाली प्रभुपाद ने बताया, सिद्ध किया शास्त्रों के आधार पर। अभी देखो बड़े बड़े जो अनुयायी हैं गीता भागवत के, वो भी भेदभाव करते हैं, यहां तक कि गौड़िया मठ वालों ने प्रभुपाद से भेदभाव किया। आपको एक बात बताएं, हम ये प्रभुपाद की लीलामृत में है कि एक फेमस फोटो है प्रभुपाद की गौड़िया मठ के सन्यासियों के साथ मायापुर में। ये सब सन्यासी मिलने आए प्रभुपाद को, और प्रभुपाद जब अमेरिका से आए भक्तों को लेकर के, वो ये कहते हैं, बात में बात आई है, आप इन्हें ये जो अमेरिका में प्रचार किया गोरे लोगों में, किसकी अनुमति से किया आपने? आपने हमारी अनुमति नहीं ली, इसलिए जितनी आपके अनुयायी हैं और जितना पैसा, सब हमको हैंडओवर कर दो। प्रभुपाद हंसने लगे, कैसी? अच्छा फिर कई ये ऑब्जेक्शन करते हैं, कमलेश्वर जवनों को उन्होंने ब्राह्मण बना दिया, अरे वो तो शास्त्र का आधार है, भागवत का आधार है, गीता का आधार है। प्रभुपाद ने चैतन्य महाप्रभु, मैं वो सुन रहा था, चैतन्य महाप्रभु ने अच्छा हरिदास ठाकुर को आचार्य पद दिया, हरिदास कौन थे? मुसलमान थे। और अद्वैताचार्य ने जब श्राद्ध किया तो श्राद्ध का जो प्रसाद उनको अर्पण किया, कहते आपको खिलाने में ऐसा कि मैं 1 करोड़ ब्राह्मण को खिला रहा हूं, अद्वैताचार्य कह रहे हैं जो महाविष्णु के अवतार हैं। तो प्रभुपाद की जो प्रीचिंग है, जो प्रचार है, बिल्कुल ट्रू अंडरस्टैंडिंग है, इसकी जरूरत है बड़ी। ये लोगों को पता लगना चाहिए, हमारे लोग बिल्कुल भटक चुके हैं, हमारे लोगों को पता ही नहीं कहां जाना है, क्या करना है, किसको पूजना है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। अगर ठीक समय से हम कार्य करेंगे तो तभी हमारा जीवन सफल होगा, अगर हमारी समझ ठीक नहीं हुई तो हमें 84 के चक्कर में जाना पड़ेगा, आवागमन में जाना पड़ेगा। भगवान गीता के 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में कह रहे हैं ना, इंद्रियार्थेषु वैराग्य, इंद्रियों के तर्पण से वैराग ले लो, मना अहंकार एवच, मन से अहंकार निकालो। जब तक आदमी इंद्रियों के तर्पण कर रहा है ना, तो उसको अहंकार है, अहम मामेति, मैं और मेरा और तू और तेरा, मैं और मेरा तू और तेरा है माया का घेरा, ये कांटा खटक रहा है, ये कांटा खटक रहा है, भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। झूठी काया ठगनी माया, अरे चक्कर में क्यों आया, जगत में लटक रहा है, जगत में लटक रहा है। नरतन मिला है तुझको, खो क्यों रहा है इसे खेल में। कंचन सिकाया तेरी उलझी है विषयों की बेल में। सुते और दारा घई भव सारा, कुछ भी नहीं है तुम्हारा, वृथा सिर पटक रहा है, वृथा सिर पटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, दो दिन की जिंदगानी, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। तो हम लोग भटक रहे हैं और अपने सरों को पटक रहे हैं और जगत में लटक रहे हैं। नहीं, जैसे होता है ना पेंडुलम लटक रहा है ना घड़ी के नीचे, इधर से इधर, इधर से इधर, हम लटक रहे हैं। प्रभुपाद जी के बताए हुए रास्ते पर चलो, जो चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दी उसको अपनाओ और अपने जीवन को सफल बनाओ। हमारे जीवन की सफलता इसी में है कि हम गोपीनाथ भगवान की शरण में आए, राधा कृपा प्राप्त करें, पंच तत्व की कृपा प्राप्त करें, क्षण गोस्वामियों की कृपा की याचना करें, पूरी गुरु परंपरा की कृपा की याचना करें और प्रभुपाद को कभी नहीं भूलें। याद रखना 10,000 साल तक प्रभुपाद को याद रखना पड़ेगा। जो प्रभुपाद की कृपा लेगा उसका बेड़ा पार, और जिसने प्रभुपाद को पीछे किया उसका बेड़ा मझधार, उसका बेड़ा पार नहीं हो सकता। अरे प्रभुपाद एक बड़े महान वैष्णव हैं, बोलो हैं या नहीं है, जवाब दिया करो। आपको समझ आ रही है हिंदी? नहीं, कोई ट्रांसलेशन करो। अब लगते तो आप कहां, यू आर फ्रॉम विच प्लेस और यू स्पेनिश के पासा। स्पेनिश बिल्कुल इंडियन नहीं लगते हैं। अभी आप देखो कि प्रभुपाद जो हैं उनकी जो ये मार्गदर्शन की जो अंडरस्टैंडिंग दी हुई इतनी सुंदर है, उस पर चलेंगे तो हमारा कल्याण होगा। और प्रभुपाद जी क्यों विशेष है, प्रभुपाद जी की विशेषता का कारण क्या है? किसी से मिलना है? हाँ बोलिए माता जी, कुछ कहना चाहती है माता जी? तो माता जी जल्दी है आपको, हैं? थोड़ी देर रुक जाओ, मैं अभी समाप्ति कर देता हूं। मैं समझ गया आपने मिलना है मेरे से, मैं समाप्ति करता हूं, अभी बात करते हैं आपसे, हैं? तो प्रभु सारे वैष्णवों को प्रणाम है, सारे वंदनीय है, लेकिन प्रभुपाद विशेष क्या हुआ? प्रभुपाद विशेष, आपने फोन किया था ना मेरे ख्याल में, नहीं हरिद्वार गए थे आप? नहीं, दूसरा था कोई। तो प्रभुपाद विशेष इसलिए हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने एक भविष्यवाणी की, पृथ्वी तेज यत्र नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइब मोरो नाम, दुनिया में जितने नगर ग्राम है सब में मेरे नाम का प्रचार होगा। यह आज से 520 साल पहले भगवान ने कहा था, ठीक है। अच्छा, इस वाणी को सार्थक किसने किया, बोलो बोलो। प्रभुपाद जी का पद विशेष है या नहीं है? देखो मैं प्रभुपाद जी को मिलने से पहले कई साधुओं को मिला, कईयों को मिला, लेकिन कृष्ण ने कृपा करके मुझे अपने शुद्ध भक्त से मिला दिया। प्रभुपाद जी से मेरी भेंट हुई और इनकी बड़ी कृपा मिली, अपार कृपा। आज जो हम जी रहे हैं ना, पता कैसे जी रहे हैं कौन बता सकता है? कोई पता नहीं कैसे, केवल प्रभुपाद कृपा से जी रहे हैं, नहीं तो कोई जीने की आशा ही नहीं है। चारों ओर से निराशा ही निराशा, आशा एक केवल प्रभुपाद। तो आने वाले 10,000 साल तक हम लोगों को प्रभुपाद की शरण लेनी है। और देखो कि ये तो एक ओपन सीक्रेट है, कुछ हमारे गुरु भाई, हमें दुख होता है, वी फील सॉरी फॉर देम, बेचारे चले गए क्योंकि उन्होंने प्रभुपाद को पीछे कर दिया, खुद आगे हो गए, चले गए बेचारे। हम नहीं चाहते कोई भी प्रभुपाद का शेल्टर छोड़ के जाए, सभी प्रभुपाद के शेल्टर में रहें, उनकी शरणागत रहें, और ये कृपा करेंगे तो पूरी गुरु परंपरा की, छड़ गोस्वामियों की, गौर लेता है पंच तत्व की, राधा गोपीनाथ की कृपा होगी, जीवन सफल होगा। अगर इनको हमने इग्नोर कर दिया ना, तो बाकी कोई कृपा हम पर नहीं करेगा। बोलो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। आप सबका धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ हम प्रवचन को विराम देते हैं। मेरी इच्छा थी एक भजन सुनाने की, पर आप लोगों की इच्छा नहीं है तो नहीं सुनाएंगे हम। हैं? सुनेंगे? मैंने सोचा था आपकी इच्छा नहीं है। अच्छा माता जी, आप तब तक महामंत्र बोलो, मैं माता जी से एक मिनट बात कर लेता हूँ। आप आइए यहाँ पर आगे, मैं माता जी से बात कर लेता हूँ। क्या कहती है माता जी को कोई जरूरी बात? आप सब बोलो हरे कृष्ण। अगर कोई प्रश्न हो तो वो भी सोच लेना। हरे कृष्ण बोलिए। जय हो, कल्याण हो। आज पहले भी सुना आपने कभी? अच्छा, मैं संस्कार में रोज आ रहा है मेरा, शाम को 8:30 बजे अभी चल रहा है। यहाँ पर बॉम्बे में है। मैं आपको सब दे देता हूँ, पता आपका एड्रेस
मुझे, आपका नंबर
सब कुछ।
अभी कब ले सकते
हैं? प्रवचन के बाद।
अभी आज है?
मैं हूँ, मैं बस जू में ठहरा हूँ, जू से आया हूँ। इनको माइक दीजिए।
हरे कृष्णा प्रभु।
हरे कृष्णा।
ऐसा क्यों होता है कि जब तक हम लोग मंदिर में रहते हैं सब कुछ अच्छा लगता है, सब कुछ शुद्ध लगता है, लेकिन मंदिर से बाहर जब अपने काम पे जाते हैं तो फिर वो जो माया के प्रभाव है हमारे ऊपर धीरे 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 धीरे
बढ़ता जाता है।
हाँ, बढ़ता जाता है।
क्या शुभ नाम है आपका?
संजय राठी।
संजय
राठी।
संजय जी, ऐसा है क्योंकि मंदिर में सभी भजन कर रहे हैं, जब वो काम पे जाते हैं वो सब लोगों के विचार बिगड़े हुए हैं, ब्रेन डिपार्टमेंट कंप्यूटर डाउन आ रहे हैं सभी के, इसलिए बैड वाइब्रेशंस हैं।
उससे बचने के क्या उपाय है फिर?
उससे बचने के लिए आपको मंदिर में रहना पड़ेगा परमानेंट,
हमेशा।
और कोई, देयर इज नो वे
आउट। जिसके लिए ये पॉसिबल नहीं है वो क्या करेगा, जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर चुका है?
नहीं तो हमारे, अच्छा हाँ, कितने बच्चे हैं आपके?
मेरे बच्चे नहीं है, शादी भी नहीं हुई है।
तो फिर आपने प्रवेश किया ही नहीं तो चिंता क्यों? चिंता क्यों करते हैं?
करने वाला हूँ।
हम नहीं करने देंगे आपको। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, आप नहीं किए तो देखो, आप अच्छी आत्मा हो राठी जी, आप अच्छे हैं, क्योंकि आप अच्छे वातावरण में रहना चाहते हैं। तो फिर आप अगर आप गृहस्थी भी बनेंगे ना, तो हम, आप हमारे से संपर्क कीजिए, हम रख लेंगे आपको, बाल बच्चों के साथ रख लेंगे। भक्ति करनी है आपने, एक चिंता करनी पड़ेगी आपको जब हमारे पास आप आएंगे, कि मैं भजन हर समय कैसे करूं, और जो सेवा मिले वो करो। बाकी आपका बीबी बच्चों का सब पालन प्रभुपाद करेंगे, और बच्चों की पढ़ाई भी होगी, आपने भक्ति कृष्ण की चिंता करनी है।
सर फिर माता पिता?
माता पिता को भी लेके आइए। अरे माता पिता क्यों नहीं?
शादी करूंगा तभी माता पिता के लिए ही करूंगा ना।
है?
माता पिता के लिए ही करूंगा शादी।
नहीं, ये तो बहाना होता है।
हाँ।
देखो कई बार सुनो, होता ये है राठी जी कि इंद्रियां हमारी बलवान है, मन हमारा थोड़ा दूषित है, लेकिन बहाना लगाते हैं माता पिता का। नहीं, अब समझ के राठी जी, ठीक है। सुनिए मैं आपको एक बात बताता हूं। एक एक छोटी सी हमारे श्री से पिता एक कहानी सुनाते थे। एक औरत थी, उसका घर में झगड़ा हो गया, तो घर से चली गई। घर का कोई नहीं मनाने आया उसको, सोचे कोई मुझे मनाने आएगा, कोई नहीं आया, बोला मरने दो उसको। अभी घबराई, रात पड़ गई, जब साय होने लगा तो भेड़ बकरियां, उनके जानवर, गांव के लोग थे, वो घरों को जाने लगे। सोचने लगे रात को मैं कहां रहूंगी, मुझे लगता कोई नहीं मनाएगा, सारे दिन मैं बैठी हूं भूखी यहां पर। तो वो भेड़ थी ना, उसकी पूंछ पकड़ी उसने, तो उसको कहती है वो, ले लेजी मां मैं नहीं जानती। लेला मतलब उसका भेड़ का बच्चा लेला, कहते मैं नहीं जा रही, तू जबरदस्ती ले जा रही है मेरे को घर में। बात समझ में आई आपके? नहीं, केवल मैं शादी नहीं करना चाहता, मेरे मां बाप करवा रहे हैं शादी, मर्जी अंदर से मन अपना है, जाना वो खुद चाहती है, लेकिन भानव नारी के तू ले जा रही है मेरे को, मैं नहीं जा रही घर में, पूछ पकड़ के घर के अंदर आ गई वो। ये सब हमारे मन की कमजोरी है। खैर अब माता पिता को भी लेके आइए, भक्ति
मेरा पूरा परिवार यहाँ पे आता है, माता पिता भाई बहन सभी आते।
नहीं आप अगर पूर्ण रूप से भक्ति करना चाहते हैं, अगर यहाँ स्वीकार कर लें तो अच्छी बात है, नहीं तो हमको कांटेक्ट कीजिए।
लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि परिवार में सब लोग नाम तो लेते हैं लेकिन कितना मन से लेते हैं ये पता नहीं।
कितना
कितना मन से लेते हैं ये पता नहीं क्यों। पता है जब घर जाते हैं या ऑफिस में होते हैं तब ये माया का प्रभाव क्यों रहता है सभी के ऊपर, यहाँ पर आने के बाद भी?
उसका उत्तर दिया ना मैंने, क्योंकि ऑफिस में वातावरण अच्छा नहीं है ना, यहाँ भगवान विराजमान है, भक्त लोग सब उनकी सेवा कर रहे हैं, नाम भजन हो रहा है, यहाँ जो परमाणु है ना वाइब्रेशंस सभी अच्छी हैं, वहां वाइब्रेशंस अच्छी नहीं है।
वहां कैसे अच्छी हो सकती?
वहां फिर आप भजन करो भगवान का अच्छी तरह से, अच्छे लोग आगे पीछे हो, अच्छी भावना हो तो तभी अच्छा हो।
बाद में मिल सकते हैं, अभी
जरूर मिल सकते हैं, मिलिए। और कोई प्रश्न किसी को, यहां किसी को है? नहीं, अच्छा मैंने कहा माइक मांग रहे प्रश्न पूछने के लिए। ठीक है, तो एक भजन ऐसा बताया है हरि भक्तों व माताओं के, हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। क्या करना चाहिए बोल दिया करो सभी लोग, हिंदी नहीं जानते आप लोग, भगवान से क्या करना चाहिए? लेकिन फिर प्रश्न उठता है कि हमारी प्रार्थना भगवान सुनते नहीं, ठीक है, क्यों नहीं सुनते हमारी प्रार्थना भगवान? हमारी प्रार्थना भगवान इसलिए नहीं सुनते कि थैंक यू, हमारी प्रार्थना शुद्ध नहीं है। तो फिर कैसे प्रार्थना करनी चाहिए कि पूर्ववर्ती जो शुद्ध भक्त हुए हैं उनके माध्यम से प्रार्थना करनी है फिर भगवान सुनेंगे। तो ये प्रार्थना से ही एक भजन है।